भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका गोपुरपट्टी स्थान में स्वागत है। जब तिरुमंगाई अलवार के द्वारा मंदिर बनाया गया, 7 परिक्रमा वाला, 21 गोपुरम वाला, 156 एकड़ एरिया में, उसके बाद में कुछ साल के बाद में फिर मुगलों का आक्रमण शुरू हुआ भारत पर, और उस समय में यहाँ पर चोला वंश, चेरा वंश और पंड्यन वंश के 3 राज्य हुआ करते थे, त्रिवेंद्रम में, मदुराई में और श्रीरंगम में। लेकिन एक समय पर मुसलमानों का आतंक ज़्यादा हो गया और उन्होंने उस समय पूरे श्रीरंगम के मंदिर पर कब्जा कर लिया। उस समय उनका कब्जा होने के पहले सब भक्तगण जो है वो श्रीरंगम के भगवान को लेकर यहाँ पर आए और यहाँ पर बहुत साल भगवान की सेवा हुई। गुप्त रूप में मुगलों को पता नहीं था कि यहाँ भगवान को रखा गया है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य जो है वो भगवान की मूर्ति को नष्ट करने का हुआ करता था। तो यहाँ पर लाया गया और इसी जगह पर उनका कई साल तक सेवा किया गया। जब फिर दोबारा हिंदुओं के राजाओं ने मुसलमानों को परास्त करके दोबारा अपना जो नियंत्रण प्राप्त किया श्रीरंगम के मंदिर पर, फिर दोबारा भगवान के विग्रह जो है यहाँ से वहाँ पर लेके गए उनको, तो इस स्थान पर फिर प्रतिबिंब मूर्ति का स्थापना किया गया। जिस स्थान पर भगवान की मूर्ति पहले थी और चली गई, फिर उसी जगह पर दूसरी मूर्ति स्थापन करके इसकी सेवा शुरू हुई है। तो कल हम मुरली भट्टर के घर में जाएंगे और उनके सामने ही उनका गौरव करेंगे। मुरली भट्टर जी के ही अधिपत्य में इस मंदिर की सेवा चल रही है। ये स्थान भी वैसे भगवान का यहाँ से जाने के बाद में फिर ऐसे ही जीर्ण हो गया था, फिर भी मुरली भट्टर उनके प्रयत्न से इस जगह को फिर दोबारा बनाया गया मंदिर। उसकी सेवा पूजा, आचार्य पुजारी सब रखे गए, फिर उत्सव मूर्तियाँ सब यहाँ पर उत्सव संपन्न होते हैं। तो ये इस जगह का छोटा सा इतिहास है कि यहाँ पर भगवान की सेवा की गई। जैसे वृंदावन से भगवान के विग्रहों को लेकर फिर वो जयपुर गए और फिर वृंदावन में उस जगह पर प्रतिमा मूर्तियों को स्थापना किया गया। तो इसके पहले हम लोग गुणशीलम में गए थे, वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए। तो गुणशीलम नाम की जगह जो हम लोग गए थे पहले, उसके बहुत ही सुंदर वहाँ पर बालाजी का दर्शन था। उसकी भी संक्षेप में कथा इस प्रकार से है कि गुणशीलम नाम का एक भक्त था, भगवान का भक्त था। और वो एक बार तिरुपति बालाजी में दर्शन करने गया था और वहाँ के सुंदर तिरुमलेश्वर विष्णु भगवान के दर्शन करने के बाद में वो इतना भाव विभोर हो गया कि वो वहीं पर रोने लगा कि मैं यहीं रह जाऊँगा। तो उसके बाद में रोने लगा और कहने लगा कि भगवान हमारे पास आ जाओ। वो श्रीरंगम से तिरुपति में गया था दर्शन करने के लिए। तो उसकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, या तो मैं आपके पास रहूँगा या आपको हमारे पास आना होगा। तो भगवान ने उसको दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि तुम दोबारा श्रीरंगम चले जाओ और वहाँ पर तपस्या करो। फिर तपस्या के फल के स्वरूप में हम आपके आनंद के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। तो उसने गुणशीलम ने बहुत कड़ी तपस्या शुरू की। वहाँ पर फोटो देखा आपने ना, अग्नि की ज्वाला के बीच, 5 अग्नि की ज्वाला के बीच में भजन कर रहा है। फिर बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है, हाँ, उसमें भजन कर रहा है, ठंड में भी कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी तीव्र तपस्या होती है वहाँ पर एक व्यक्ति को बहुत टेंशन आता है, इंद्र को। इसलिए इंद्र को लगा कि अब ये मेरा स्थान ले लेगा, इसलिए उसने वहाँ पर अपना अपना आतंक शुरू किया। उसके बाद पर वहाँ ब्रह्मा जी और देवता लोग आए और उन्होंने इंद्र को समझाया कि ये आपके स्थान को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, ये भगवान विष्णु को आह्वान कर रहा है। तो सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया उसके बाद में। और उसके पश्चात फिर एक दिन जहाँ पर हम लोग गए थे वो घना जंगल था, वहाँ पर जहाँ पर तपस्या कर रहा था वहाँ पर भगवान बालाजी प्रकट हो गए और उन्होंने भाव से गदगद होकर भगवान का स्वागत किया, प्रतिष्ठापना किया और बहुत लंबे ऐसे तक वहाँ पर भगवान की सेवा की। उसके बाद में उनके गुरु ने उनको कहा कि मैं आपको भी शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, आप मेरे पास चले आओ। तो समय उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को वहाँ पर भगवान की सेवा में लगाया और वो गुरुजी के पास चले गए दीक्षा लेने के लिए। लेकिन वो जंगल था, उसमें बहुत शेर वेर आया करते थे, बहुत भयंकर जगह थी वो। तो पुजारी डर गया एक्चुअली, काफ़ी समय प्रयास किया उसने, लेकिन बाद में ऐसे कहते कि वो एक एक भोग लगा के भागता था वहाँ से। तो ऐसे ही वो स्थान लुप्त हो गया। हाँ, लुप्त हो गया मतलब उसमें वो क्या कहते हैं उसको, चींटियों का घर बन गया पूरा, वारुल वारुल, हाँ पूरी चींटियों का घर बन गया पूरा और भगवान लुप्त हो गए चींटियों के घर के अंदर। अभी ऐसा ही होता है हमारे इतिहास में, आप देखेंगे कुछ समय के बाद में हमेशा भगवान लुप्त होते हैं, फिर दोबारा प्रकट होते हैं, फिर लुप्त होते हैं, फिर दोबारा प्रकट होते हैं। गौरांग महाप्रभु भी आए, उन्होंने भी अवतार लिया, लीला किया मायापुर में और बराबर 100 साल के बाद में गंगा नदी ने उनके जन्म स्थान के ऊपर कवर कर लिया और पूरा अंतर्द्वीप जो है वो पानी में भर गया। उसके बाद दोबारा ठाकुर भक्ति विनोद जी की कृपा से दोबारा वो स्थान प्रकट हो गया, फिर वहाँ मंदिर बना। ऐसे भगवान अपनी दिव्य इच्छा के अनुसार निश्चित काल के बाद प्रकट होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से भगवान लुप्त हो गए और फिर वहाँ पर लोग अपने अपने गाय चराने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन उनको पता चला कि वो गाय का दूध निकाल कर वहाँ पात्र में रखा करते थे और कुछ समय बाद वो दूध गायब हुआ करता था। तो वो अपने गुरु जी के पास गए, बोला कि अरे यहाँ पर तो जितने दूध निकाल के रखते हैं वो दूध ख़त्म हो जाता है, अपने आप ही पात्र में से लुप्त हो जाता है। तो फिर उन गुरु जी ने आके बताया कि ये एक्चुअली यहाँ ठाकुर जी का निवास है, यहाँ पर ढूंढना चाहिए कहाँ पर ठाकुर जी हैं। तो उस समय जो राजा ने तपस्या किया था कि अयोध्या से भगवान श्रीरंगम में आना चाहिए, उनका नाम क्या था, यस धर्मवर्मा, इतना सर संकोच क्यों करते हो, बोलो। अगर आपको विश्वास है तो आप जोर से बोलेंगे धर्मवर्मा। हाँ, इसलिए सुनना जरूरी है। हाँ, कितना भी प्रसाद का प्रभाव रहेगा ना मोती पर, फिर भी सुनना जरूरी है। जो प्रसाद आपने खाया है वो मैंने भी खाया है। तो इस तरह से धर्मवर्मा राजा के स्वप्न में भगवान आते हैं, क्योंकि उसी समय धर्मवर्मा राजा का ही यहाँ पर राज्य था जब गुणशीलम का यहाँ तपस्या चल रही थी। तो धर्मवर्मा राजा को भगवान स्वप्न में आके बताते हैं कि इस जगह पर मैं विराजमान हूँ और वहाँ पर जाकर अगर जहाँ पर दूध लुप्त होता है उस जगह पर जाकर आप एक बड़ा आपको चींटियों का घर मिलेगा, उस पर आप अभिषेक का जल डालिए और मैं वहाँ से प्रकट हो जाऊँगा। धर्मवर्मा राजा ने फिर सबको इकट्ठा करके वहाँ पर अभिषेक की व्यवस्था की और जब राजा धर्मवर्मा के हाथ से अभिषेक डाला गया उनके ऊपर, अभिषेक के जल के साथ सारे चींटियों का घर जो है अपने आप नष्ट हो गया और दोबारा फिर बालाजी की मूर्ति प्रकट हो गई। एक बात बताना भूल गया मैं कि जब बालाजी पहली बार उस गुणशीलम के लिए प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं तिरुपति बालाजी हूँ और जो लाभ मेरा दर्शन तिरुपति में करने से होता है वो आपको यही मिलेगा, जो भी लोग आएंगे उनको यहाँ पर तिरुपति बालाजी का दर्शन करने का लाभ मिलेगा। तो साक्षात तिरुपति यहाँ प्रकट हुई है श्रीरंगम में, ये समझना। और वहाँ पर कितना होता है, आधे सेकंड का दर्शन होता है, पता भी नहीं कि क्या देखा और क्या नहीं देखा। याद ही रहता नहीं, इतने कम समय में हमारे दृक्पटल यानी कि रेटिना पे रजिस्टर होने के पहले ही हम लोग आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर इसलिए हमें गुणशीलम का अनंत बार धन्यवाद देना चाहिए, है ना। जो वहाँ पर अति दुर्लभ दर्शन है, वहाँ पर बहुत समय तक आपको आराम से करने को, इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर दर्शन। सेम खाली तिरुपति की मूर्ति जो थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, लेकिन इतना सुंदर श्रृंगार है उनका। एक हाथ ऐसे नीचे है, एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, नहीं एक हाथ ऐसे है, ऐसे पकड़ा हुआ है, और एक हाथ से आशीर्वाद, ये हाथ नीचे है, ऐसे ये हाथ ऐसे नीचे है और आशीर्वाद दे रहे हैं, और सोने के उनके चरण कमल है। इतना सुंदर दर्शन प्राप्त है वहाँ पर। तो इसी उस जगह का नाम फिर गुणशीलम रखा गया। उस गुणशीलम, क्योंकि भगवान ने भी उसको वरदान दिया था कि तुम्हारे नाम से ये जान, ये जगह जानी जाएगी, तब से ये जगह जो है जहाँ पर वो मंदिर है वो गुणशीलम के रूप में जाने जाती है, जो उस भक्त का नाम है जिसने ये तपस्या करके बालाजी भगवान को वहाँ प्रकट करवाया था। उस जगह का और एक महात्म्य है कि वहाँ पर 48 दिन कोई मनोविकार का रुग्ण अगर वहाँ पर रहता है, मेंटल साइकेट्रिक पेशेंट, तो डॉक्टर वहाँ पर उनको एडमिट कर देते हैं, 48 दिन वहाँ पर दवा भी देते हैं, लेकिन रोज़ 1 बजे वहाँ पर लोगों को वहाँ खड़ा कर देते हैं, और 1 बजे की आरती के बाद जो जल अर्पण करते हैं भगवान को, वो जल उनको छिड़कते हैं। और हमारे साथ में भक्त आए हैं, गिरधारी गोपीनाथ प्रभु वही हैं इधर, वो बता रहे थे कि उन्होंने भी कई पेशेंट यहाँ पर लाए हैं और वो यहाँ पर ठीक हो गए हैं। तो हमने सोचा हमको भी लेना चाहिए, क्योंकि हम भी सब लोग मनोविकार के रुग्ण हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हम लोग पागल है क्या? लेकिन ऐसे प्रभु जी को बता रहा था मैं कि डॉक्टर के पास हम जाएंगे और डॉक्टर बोल रहा कि आप बीमार हो और आप उसको मानते नहीं कि बीमार हो, तो आपको कैसे ठीक करेगा? हाउ विल ही क्योर यू? सबसे पहले हमको नम्र बनकर अपनी बीमारी को स्वीकार करना चाहिए कि यस भाई, आई एम नॉट वेल, आई एम सिक, तभी जाकर वो इलाज हो सकता है अपना, तभी जाकर कुछ ठीक होने की उम्मीद भी आपके अंदर आ सकती है। तो हम लोग सब लोग मनोविकार का रुग्ण क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने मन से भगवान को ठुकरा दिया है, इच्छा से, अपने इंडिपेंडेंस इच्छा से भगवान को अपने जीवन से अलग कर दिया है। नहीं चाहिए हमको, अलग जीवन जीना है, भौतिक दुनिया में आकर शरीर धारण करते हुए इंद्रियों का भोग करना है। तो एवरीबॉडी हु इज़ इन द मटेरियल वर्ल्ड इज़ अ मेंटल पेशेंट, जो देहधारी है। हम सब लोग देह धारण करके बैठे हुए यहाँ पर, जब तक हमारा देह धारण किया हुआ है तब लोग हम सब मरीज हैं, बीमार है भाव रोग से, और मन से भगवान को ठुकरा कर इंडिपेंडेंट जीवन जीना चाहते हैं। फिर हमको इस इंडिपेंडेंट जीवन के अंदर फिर शरीर की बीमारी होती है, फिर मन की बीमारी होती है, फिर और बुद्धि की बीमारी होती है, अहंकार की बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ हो जाती है, और उसका फिर हम प्रयास करते हैं क्या करना है, कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, कौन सा इलाज करूँ। इन सबका, सब तकलीफों का जड़ क्या है? एक ही है, डिज़ायर टू एन्जॉय सेपरेट फ्रॉम गॉड, भगवान को अलग करके इंद्रियों का भोग करने की जो प्रवृत्ति है उसी के कारण हम लोग यहाँ पर आए हैं। वो सभी रोगों की, सभी जड़ों, रोगों की जड़ है वो, इट्स अ रूट ऑफ ऑल द डिसीजेस। हाँ, तो वो जो मानसिक हमारा विकार है जिसकी वजह से हम लोग बार बार भगवान को छोड़कर माया की ओर भागते हैं, हो सकता है कि आज जल का छिड़काव होने के बाद में उसका शुरू होना, मतलब ठीक होने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई होगी आज। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग क्योर्ड होपफुली हैज स्टार्टेड टुडे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा था उस समय कि सबसे पहला रोगी तो मैं हूँ, और कई रोगियों को लेकर आया हूँ, घूम रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन जब तक हम लोग नम्रता से स्वीकार नहीं करेंगे भगवान के सामने, तो फिर हमें डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव इलनेस से, कई स्किजोफ्रेनिया, ऐसे कई अलग अलग प्रकार के बीमारी, उसके ऊपर उसका आइसिंग हो जाएगा। एक पुरानी बीमारी तो है, उसके ऊपर और नई नई बीमारी का आइसिंग हो रहा है, और सबका इलाज करना है हमको जड़ से। और यहाँ से छोड़ के भी चले जाएंगे, मर जाएंगे, और यहाँ का बीमारी सब यहाँ छोड़ जाएंगे, नया शरीर प्राप्त होगा, फिर नई बीमारी शुरू होगी, नया परिवार होगा, नए सदस्य होंगे, नया देश, नई जाति, नए शत्रु, नए विकार, नई इच्छाएँ, नए विषय भोग करने के विषय, और नया स्ट्रगल। तो स्ट्रगल के अंदर झगड़े, वाद विवाद, ढोंग, अहंकार, कितना तकलीफ है यहाँ पर। तो वो बालाजी विष्णु महाराज, जो तिरुपति बालाजी महाराज वहाँ पर विराजमान है गुणशीलम में, ये आपके सभी मनोविकारों का इलाज कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग प्रार्थना करो, वहाँ पर भी किया होगा, यहाँ पर भी करो। यहाँ पर श्रीरंगम के भगवान ने बहुत समय तक निवास किया है, बहुत पवित्र जगह है। अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ की जो अनेक अनेक कथाएं हैं, एक कथा आपको यहाँ बता सकता हूँ। नींद आ रही है कि नहीं आ रही? तो श्रीरंगम एक इतना पवित्र स्थान है कि यहाँ पर कई संतों ने आकर निवास किया है। जैसे मैंने बताया, रामानुजाचार्य यहाँ के प्रधान आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के जो लक्ष्मी देवी से आरंभ होता है, संप्रदाय 12 होते हैं, हाँ, 12 महाजन के द्वारा 12 संप्रदाय का आरंभ होता है। उसमें भीष्मदेव भी है, सीता के पिता जो जनक राजा भी हैं, उसमें नारद मुनि हैं, उसमें कुमार हैं, उसमें लक्ष्मी देवी है, शंकर भगवान हैं, उस ब्रह्मा जी हैं, हाँ, और कौन, यमराज हैं, हनुमान नहीं, ऐसे 12 महाजन हैं। नहीं, भीष्मदेव का हो गया, बताया मैंने, नहीं नहीं, प्रहलाद जी हैं उसके अंदर। तो ऐसे 12 महाजन भगवान के द्वारा नियुक्त हैं, वो उन्होंने अपने आप एप्लीकेशन दिया नहीं है, भगवान ने उनको सिलेक्ट किया है। इट्स अ बाय इन्विटेशन प्रोसेस, नॉट बाय एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये 12 महाजनों से 12 संप्रदाय शुरू होते हैं, लेकिन कलयुग में केवल 4 संप्रदाय प्रचलित हैं, बाकी 8 संप्रदाय कलयुग में प्रचलित नहीं हैं। तो वो कौन से संप्रदाय हैं कलयुग में, बता सकते हैं आप? एक कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जो हमारा संप्रदाय कौन सा है इसमें से? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये हमारा संप्रदाय है, इसमें हम लोग अटैच्ड हैं। हाँ, आप कोई भी होंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं से इसमें से एक को अटैच होना पड़ेगा। यू कैनॉट से कि मैं बहुत साल से जब कर रहा हूँ या जब कर रही हूँ, चारों नियम का पालन भी कर रहा हूँ और सब प्रकार के शास्त्र पढ़ता हूँ, प्रसाद खाता हूँ, अपराध नहीं करता हूँ, कोई पाप नहीं करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, फिर भी इतना सब करने पर भी आपको भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। जैसे कि आप, जैसे उदाहरण से आप, मैंने आपको सब मेडिकल की किताब का लिस्ट दिया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, हाँ, और फॉरेंसिक मेडिसिन, मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी, सबका मैंने आपका किताब का नाम लिख के दिया, सब आपने मार्केट में खरीदा और सब पढ़ाई किया, तो आपको उसके मरीज आएगा इलाज करने के लिए? नो, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, उसका एंट्रेंस वेंट्रेंस देके वो कॉलेज में एंट्रेंस देना पड़ेगा, और वहाँ पर जो अनुभवी डॉक्टर हैं उनके अंडर आपको ये सब सीखना पड़ेगा। केवल किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं बनता है कोई, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो सब किताब लेकर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, प्रवेश लेना पड़ेगा, वहाँ पर बोनाफाइड रजिस्टर्ड कॉलेज होना चाहिए। अभी बहुत सारा नकली कॉलेज भी आ गया है ना, कुछ देर मालूम पड़ता है कि डिग्री का वैल्यू नहीं कुछ, 50 लाख डोनेशन दिया, MBBS कर दिया, आपने डिग्री रजिस्टर्ड का वैल्यू नहीं कुछ, तो यू आर नोबडी, मिस्टर नोबडी आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है, जब तक बोनाफाइड संप्रदाय में हम लोग अटैच नहीं होते हैं तब तक भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिलती है। इसलिए अगर किन लोगों को यहाँ पर ऐसा गलत फहमी है कि हम लोग भी भजन करते हैं, पाप नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, दारू नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, केवल प्रसाद खाते हैं, जप करते हैं, लेकिन जब तक आपने गुरु की दीक्षा स्वीकार नहीं की है, गुरु का आश्रय नहीं ग्रहण किया है, और वो गुरु जब तक बोनाफाइड संप्रदाय से नहीं है, तब तक आपने यहाँ पर कितना भी छलांग लगाया तो यहीं कूदते रहेंगे आप। वो कैसे है, नदी में बैठे हुए हैं, नदी बोट में बैठे हुए हैं, बोट को नांगर लगा दिया गया है और आप चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, आगे जाएंगे क्या? सारी मेहनत बेकार है, जब तक वो एंकर नहीं निकालेंगे तब तक आप वहीं रहेंगे, रात भर, दिन रात भर, 1100 करोड़ दिन के बाद भी आप उधर ही अपने आप को पाएंगे। आपने कहा इतना मेहनत किया, दिन रात इतने दिन तक किया, फिर भी उधर ही रहना पड़ेगा। तो जैसे आपके पास में पासपोर्ट है, इसका मतलब आप उसी भी देश में प्रवेश कर सकते हो क्या? आपको उस देश का जब वीज़ा मिलेगा ना, तभी आप एंट्री मिलेगी आपको। अब कितना भी आपके पास पैसा होगा, टिकट खरीदने का, वहाँ पर रहने का, वहाँ का खर्चा संभालने का आपकी ताकत होगी, लेकिन जब तक आपको उस देश के अंदर से वीज़ा नहीं मिलता है तब तक आपको उस देश में प्रवेश नहीं मिलता है। उसी तरह से ये गौलोक वृंदावन का वीज़ा है, गुरु भी आपके संप्रदाय के अंदर होने चाहिए। तो बहुत सारे गुरु, मैं नाम लेता नहीं हूँ, बहुत सारे गुरु हैं, सेल्फ स्टार्ट बोलते हैं उनको, हाँ, सेल्फ मेड, सेल्फ मेड सन्यासी, सेल्फ मेड गुरु, हजारों फॉलोअर हैं उनके, चमत्कार बहुत सारे करते हैं, लेकिन चमत्कार करने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलता है। संप्रदाय होना बहुत जरूरी है। तो चार संप्रदाय अभी कलयुग में बोनाफाइड शास्त्र के द्वारा लिखे गए हैं। एक है कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा के चार पुत्र थे सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों भाइयों से ब्रह्मा कृष्ण, ब्रह्मा कुमार, इनके संप्रदाय। संप्रदाय का एंड जो है वो कृष्ण होना चाहिए, लास्ट स्टॉप शुड बी कृष्णा, इन बिटवीन देयर शुड नॉट बी एनी कट ऑफ। हर एक संप्रदाय का अंतिम गंतव्य स्थान श्री कृष्ण होना चाहिए। दूसरा जो है वो शिवजी का है, मतलब कृष्ण, उनके पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र शिवजी और उनका संप्रदाय। उनके संप्रदाय में विष्णु स्वामी आचार्य बने हुए हैं, प्रमुख आचार्य, फिर उनका संप्रदाय पूरा आगे बढ़ रहे हैं। समवेयर यू गेट कनेक्टेड विद देम। और दूसरा है कृष्णा और उनकी, फिर उनका जो अवतार है विष्णु, उसकी सीधा पत्नी विष्णु और लक्ष्मी देवी, डायरेक्ट कनेक्शन, ब्रह्मा का बीच में कोई काम नहीं है, स्ट्रेट कनेक्शन। तो लक्ष्मी देवी का संप्रदाय जो है वो श्री संप्रदाय है, और श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य आचार्य हैं। और चौथा जो हमारा संप्रदाय जो है उसमें कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, ये संप्रदाय है। और इस संप्रदाय में स्वयं कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर फिर अवतार लिया है और इस संप्रदाय में दीक्षा लिया है। ये आप कहेंगे भगवान को दीक्षा की जरूरत क्या है, वो तो अंतिम गंतव्य स्थान तो वही है, लेकिन भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो स्वयं दीक्षा लेते हैं बोनाफाइड संप्रदाय के अंदर। आप देखो राम ने दीक्षा लिया क्या? नहीं लिया, नहीं लिया, हाँ लिया, लिया लिया, नहीं लिया कि लिया? प्रभु रामचंद्र ने दीक्षा लिया वशिष्ठ मुनि से, वो उनके गुरु थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लिया क्या? चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा मध्व संप्रदाय में ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के दीक्षित थे, ऐसा है। कृष्ण भगवान दीक्षा लिया क्या? सांदीपनि मुनि से दीक्षा लिया, सारा अध्ययन किया उनके पास। हर समय भगवान जब आते हैं तो स्वयं भी दीक्षा लेते हैं। कारण क्या है? वो स्वयं आदर्श प्रस्थापित करना चाहते हैं। वो स्वयं गीता में भी कहते हैं अगर मुझे मेरी प्राप्ति करनी है तो गुरु की शिक्षा आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न ने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तत्व का दर्शन तब होगा आपको जब आप गुरु के चरण लोगे और प्रश्न पूछेंगे और उनकी सेवा करेंगे। परिप्रश्ने न सेवया, दो शब्द है उसके अंदर, प्रश्न करके ज्ञान प्राप्त करना है, उसके आधार पर सेवा करनी है। जब ऐसा साक्षात्कारी पुरुष जो बोनाफाइड है, योग्य है, जब वो आपको आपकी सेवा स्वीकार करेगा, आपसे प्रसन्न होगा, तभी आपको वो तत्व का दर्शन करा सकता है, भगवान का दर्शन करा सकता है, और तभी आप पर उनके वीज़ा पर आपको एंट्री मिल सकती है, अपने आप में एंट्री नहीं मिलेगी। हर एक व्यक्ति को इस प्रोसेस से जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति इतना महान नहीं है कि वो इस प्रोसेस को लांग कर एकदम वीआईपी बनकर आगे जा सकता है। नो सर, नॉट पॉसिबल। ऐसा होता तो भगवान कहते हैं मैं तो भगवान हूँ, मेरे को जरूरत क्या है दीक्षा लेने की, लेकिन वो खुद भी आकर एक आदर्श खड़ा करते हैं। तो ये बात सब कहाँ से निकली? तो रामानुजाचार्य जो हैं वो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, इन्होंने भी यहाँ पर बहुत समय तक निवास किया है। तो एक ऐसे महान भक्त थे, उनका नाम था राजा कुलशेखर, उनको भी एक अलवर के रूप में मानते हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही रोचक कहानी है उनकी, बहुत अद्भुत भक्त थे वो भगवान के। तो राजा कुलशेखर ये केरल में जहाँ पर त्रिवेंद्रम में राज्य था, चेरा डायनेस्टी, चेरा राजवंश था वहाँ पर, उस राजवंश में राजा थे धृतव्रत। और धृतव्रत राजा जो थे वो केरला में राज्य करते थे, उनको कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने भगवान नारायण का बहुत सेवा किया, बहुत पूजन किया और पुत्र के लिए भिक्षा मांगी उनसे। तो उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया था कि मुझे वीर और भक्त ऐसा पुत्र होना चाहिए। तो वीर भी होना चाहिए और भगवान का भक्त भी होना चाहिए। तो उसके उत्तर में कुलशेखर का जन्म हुआ। कुलशेखर ने सभी प्रकार के जो कलाएं हैं, विद्याओं, सब विद्याएं प्राप्त कर ली, गुरुकुल में बैठकर युद्ध कौशल्य सीखा, शस्त्र विद्या सीखी और 18 विद्याओं का अध्ययन किया, एकदम पारंगत हो गया वो। और विशेष रूप से जैसे राजनीति है, भक्ति मार्ग है, सभी का उन्होंने अध्ययन किया और वो भगवान के शुद्ध भक्त बने। लेकिन साथ साथ में कुशल राज शासक भी थे, योग्य समय पर ध्रुतपद राजा ने अपने बेटे को राज्याभिषेक किया और वो वन में चले गए। तो ये राजा कुलशेखर इतने महान राजा थे कि वो स्वयं नहीं लेकिन अनंत पद्मनाभ जो केरला में है उनको राजा मानते थे और अपने आप को उनका सेवक मानते थे। जैसे हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी थे, उनका भी यही भाव था कि राज्य जो है वो भगवान का है और मैं उनका दास हूँ। जब एक बार राज्य छोड़ के विरक्त होकर चलने लगे थे तो रामदास महामुनि वहाँ पर आए थे, रामदास जी महाराज, उन्हें कहा था कि तुम क्या समझते हो, तुम राजा हो क्या, तुम केवल सेवक हो, राज्य भगवान का है, राजा वो हैं और तुम केवल उनका सेवा बन के सेवक बन के यहाँ पर रहना है, जो तुम्हारा नहीं हो तुम त्याग कैसे सकते हो, तुम्हारी नौकरी है ये। तो फिर शिवाजी महाराज का भ्रम दूर हो गया और फिर शिवाजी महाराज दोबारा फिर राज्य करने में आए और अगली बार जब आए लौट के गुरु की कृपा से समझ गए कैसे राज्य चलाना है। उसी प्रकार से अनंत पद्मनाभ जी को ये भगवान राजा मानकर उनकी सेवा करते थे, रोज शाम को पूरे राज्य का जो रिपोर्ट है वो उनको सबमिट करते थे, खड़े होकर बोलते थे उनसे कि आज ऐसा ऐसा हुआ, ये किया, ये निर्णय लिया, सब रिपोर्ट सबमिट करते थे एक नौकर की तरह। अभी आपको पता नहीं होगा शायद अनंत पद्मनाभ कौन है। अनंत पद्मनाभ भी भगवान का एक बहुत दिव्य स्वरूप है जो केरल राज्य में है। अनंत पद्मनाभ, आदि केशव, जनार्दन स्वामी और गुरुवायूर, ये चारों स्थान केरला में है। तो ये पूरी फेथ श्रद्धा के साथ में ये अनंत पद्मनाभ को सही राजा मानकर उनकी सेवा करते थे और उन्हीं की प्रेरणा से वो कई राज्यों को अपना सीमा बढ़ाते हैं, उनको परास्त करके धन दौलत समृद्धि बढ़ाते हैं। इसके लिए उनको काफ़ी सम्मान मिला, प्रजा का प्रेम प्राप्त हुआ और वो बहुत दानी भी थे, बहुत लोगों को मदद करते थे, सभी लोग उनको बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन ये सब करते हुए जब उनके मन में ऐश्वर्य का प्रभाव हुआ कुछ समय के लिए और ये भूल गए कि भगवान का सेवक हूँ मैं। और जैसे ये क्या होता है ना कि हमारे सब जो जीवन में हम लोग गरीब हैं, समझो तो गरीब आदमी हमेशा एकदम शांत रहता है, देयर इज नथिंग टू कंटेमिनेट हिज माइंड नो। जब पैसा आता है, पद आता है, अधिकार आता है, समृद्धि आती है तो आदमी मन से संकुचित बन जाता है। गरीब आदमी बहुत दिलदार होता है, कभी भी खाने में बुलाया खाना खिलाएगा घर पे आपको, लेकिन एक बार अमीर बोल गया, अमीर बन गया ना, फिर वो 10 बार सोचता है बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। द मोर ही एक्युमुलेट्स द मोर ही गेट्स अट्रैक्टेड एंड अटैच्ड बाय दैट। जब उसको लगता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये सब मेरा है, तो वो और ज़्यादा स्वार्थी बन जाता है और मित्रता सब खत्म हो जाती है, प्रेम मित्रता सब परिवार खत्म हो जाता है। इसलिए धन जो है कभी भी किसको सुख देता नहीं है, धन कभी भी किसी को थोड़े मात्रा में हो बड़ी मात्रा में हो, अधिकार नियंत्रण कंट्रोल ये कभी व्यक्ति को आत्मसुख नहीं दे सकता है। आत्मसुख तब मिलेगा जब आत्मा की भावना से वो नम्र रहेगा, ही विल बी हम्बल बाय द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल, एट द लेवल ऑफ सोल इफ इज हम्बल एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, तभी वो शांत रह सकता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये सभी दुनिया का जीवन का रिवाज है, ये प्रमाण है, सत्य है पूरा। तो ये भी ऐसे ही भ्रष्ट हो गए मती से थोड़े बहुत, तब उनको तुरंत अपने जीवन में ऐसा एकदम एम्प्टीनेस अनुभव होने लगा। नेचुरली जब भगवान को छोड़कर हम लोग बाकी सब प्राप्तियों का भोग लेने का प्रयास करते हैं तुरंत हमको ऐसा लाइफ जो है वो एम्प्टी लगने लगता है। उस समय विश्वकर्मा ने, विश्वकर्मा कौन है पता है आपको, किसको पता है बताइए, देवताओं के आर्किटेक्ट है वो, और दानवों के आर्किटेक्ट कौन है, मय दानव, मय मय उनका नाम है मय। तो देवताओं के जो आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा, उन्होंने उस समय अवतार लिया और वो कुलशेखर के गुरु बने, भगवान की प्रेरणा से उन्होंने साधु के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया और कुलशेखर को दीक्षा दिया और बोध दिया मेनली। कुलशेखर को जैसे उन्होंने संग दिया तो कुलशेखर बहुत भगवान की भक्ति में दोबारा बड़े तेजी से आ गए और इतने भगवान भावना वाहित हो गए कि वो श्रीरंगम में शिफ्ट हो गए। पहले कहाँ थे वो? त्रिवेंद्रम में थे, जहाँ पर अनंत पद्मनाभ जी का मंदिर है। तो वहाँ से वो शिफ्ट होकर फिर श्रीरंगम में आ गए। तो उसके पहले की बात यह है कि उन्होंने अपने राज्य में जब विरक्त हो गए तो उन्होंने राज्य कारोबार इतने कुशलता से सेट कर दिया कि रोज़ कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं जानता हूँ, भक्ति में भी हमारे गुरु भाई लोग ऐसे हैं, अपने बिजनेस को ऐसा सेटिंग कर दिया उन्होंने कि केवल महीने में एक बार ऑफिस जाते हैं, जितना इनकम है सब लेके आते हैं, बाकी मशीन को ऑटोमेटिक सेटिंग कर दिया है, वहाँ पर बिजनेस होते रहता है, उसका अकाउंटिंग होते रहता है, तनख्वाह लोगों को मिलती रहती है, इनका भी प्रॉफिट अकाउंट में जमा होता है, महीने में एक बार जाना है, सबको हाय हेलो करना है और अपना प्रॉफिट लेके आना है। वहाँ अगर बैठेंगे तो चार गुना कम इनकम कर सकते हैं, लेकिन संतुष्ट है वो लोग, इतना हो रहा है उतना काफ़ी है। तो वैसे इन्होंने भक्ति भाव के कारण सेटिंग ऐसा कर दिया, युद्ध वुद्ध करना बंद कर दिया, सीमा को बढ़ाना बंद कर दिया, अपना राज्य को प्रजा में क्या क्या चाहिए सबको सुविधा करने का व्यवस्था कर दिया, सब मिनिस्टरों को अपना काम बांट दिया और ऐसा सेटिंग किया कि दिन भर अभी भगवान के बारे में श्रवण करना है। इट्स वंडरफुल थिंग ना। सपोज आई हैव टू थ्रू आउट 365 डेज इन अ ईयर कीप गोइंग टू होली प्लेसेस एंड कीप गिविंग कथाज एंड इनकम, नो प्रॉब्लम, इनकम इज ऑलवेज देयर एंड विल बी ऑलवेज देयर, इट विल बी सो नाइस, बट आई हैव टू गो बैक एंड अर्न सम मनी अगेन, आई हैव टू गो बैक टू यात्रा लाइक दैट। बट जो हो रहा है वो भी चमत्कार कम नहीं है। हाँ, मैंने एक बार सोचा था ऐसे कि ऐसा एक जॉब होना चाहिए कि डे एंड नाइट यू कैन टॉक अबाउट गॉड एंड शिल यू गेट सैलरी, और कुछ देर बाद में ऐसा हुआ एक्चुअली। सो माई जॉब, वट इज़ माई जॉब, वट इज़ माई जॉब डिस्क्रिप्शन? माई जॉब डिस्क्रिप्शन इज सिंपली टू टॉक अबाउट गॉड, प्लान अबाउट हेल्पिंग पीपल टू थिंक अबाउट गॉड, हेल्प पेशेंट्स टू थिंक अबाउट गॉड, हैव स्टाफ मेंबर्स टू ट्रेन देम एंड टू थिंक टेल देम हाउ टू टेल अबाउट गॉड टू पीपल हु आर सिक इन द हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइज यात्राज एंड टेक डिवोटीज एंड पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेस ऑन यात्रा। हाउ मेनी आर परफॉर्मिंग यज्ञ? हाउ मेनी ऑफ यू आर पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल बिफोर? इन रेज हैंड्स। कितने लोग यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट थे पहले? हरे कृष्णा। ओके, कितने लोग हमारे हॉस्पिटल के हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में काम करते हैं, अटैच्ड एज डॉक्टर? यस। ओके, हरे कृष्णा। एंड कितने लोग हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स हैं? हरे कृष्णा। सी, हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार से आप लोग आए हैं, और कितने लोग यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल के मरीजों के रिश्तेदार हैं? हम नहीं, आर रिलेटिव्स? हाँ, दैट्स मीन रिलेटिव्स। इसमें से मैं सब कुछ हूँ, मालूम है आपको? मैं हॉस्पिटल का पेशेंट भी रह चुका हूँ कई बार, मैं डॉक्टर भी हूँ, ऑल रोल्स आई प्ले टुगेदर। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान क्या नहीं कर सकते, अगर आपकी बहुत प्रामाणिक इच्छा है तो हर प्रकार का आश्चर्यजनक अद्भुत कार्य भगवान आपके द्वारा करा सकते हैं, और वो अनबिलीवेबल सिचुएशन भगवान आपके लिए क्रिएट भी कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, व्हाट इज इट? इफ यू आर सिंसियर, व्हाट ही कैन नॉट डू फॉर यू? तो उस तरह से राजा कुलशेखर ने सब कुछ सेटिंग ऐसा कर दिया, नो मोर वर्किंग हार्ड। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के बारे में सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवान के विचार में और मति में चेतना में रहना। तो उसने क्या किया, बड़े बड़े एक्सपर्ट भक्तों को, ऋषियों को बुला लिया, और उनका काम क्या था, रोज सुबह ऑफिस में आना, तैयार होकर नहा धोके जप करके अपना साधना करके संध्या करके आ जाना, और ऑफिस में क्या है, 9 to 5 क्या करना है, साधुओं को बुलाना है, दिन भर कथा सुनना है भगवान का, होल डे एंड नाइट। सो मिनिस्टर्स ऑलरेडी एवरीथिंग इज सेट ना, नथिंग इज, एवरीबडी ऑल मिनिस्टर्स इन देयर सीट्स ओनली हियरिंग राम कथा। लेकिन इनकी राम कथा सुनने का जो तरीका था वह बहुत अद्भुत था। जब राम कथा सुनते थे तो वो इस समय के नहीं रहा करते थे, ही वुड गो इन टू रामायण टाइम्स, और रामायण के समय पर एक व्यक्ति के रूप में वहाँ पर वो रहा करते थे। जब वो कथा सुन रहे हैं तो मति से वो रामायण में जाते थे, वन ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स ऑफ रामायण। तो एक बार क्या हुआ, सीता देवी का हरण का जो अध्याय है मैंने बताया ना कुर्म पुराण में भी वो इतिहास का अध्याय है कि रावण ने सीता देवी का हरण किया, ये पढ़ रहे थे वो, पढ़ रहे हैं। सीता देवी का हरण किया गया, पहले अर्शुर्पणखा आई, उसके बाद में लक्ष्मण ने उनका नाक और कान काट दिया, फिर शूर्पणखा बहुत गुस्सा होकर चले गई और अपने 14,000 राक्षसों को लेकर आई, खर, दूषण और कौन था, त्रिशिर, तीन बड़े भाई, बहुत महापराक्रमी, और 14,000 सशस्त्र मायावी राक्षस की सेना लेकर वो जितने लोग सो रहे हैं उनको जगाया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। दीवार के सहारे में माया का निवास होता है, इसलिए मैं भी बैठा हूँ। सहारा लिया क्या दीवार का? नहीं लिया, मैं जानता हूँ दीवार का सहारा लेते ही निद्रा देवी आपके मति में प्रवेश कर देती, इसलिए आप दीवार का सहारा मत लो, खड़े हो जाओ। देखो कुणाल कितने नम्र है, खड़े होकर सुन रहे हैं। जिनको सुनना है, नींद आ रही है, पता है नींद आने वाली है, भोजन के बाद मेडिकली आपको अधिकार है नींद आने का। भोजन के बाद में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और सारा दिमाग का खून जो है वो पेट की ओर आता है हजम करने के लिए खाने को, और दिमाग को खून कम मिलता है तो दिमाग बोलता है चलो अभी ठीक है, रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, थोड़ा सा नींद आ जाती है। दिस इज नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बट व्हेन यू नो दैट यू हैव टू हियर एंड लिसन अटेंटिवली, देन व्हाट हैपेंस, यू हैव टू स्टैंड अप एंड सम ब्लड सप्लाई शुड गो टू द ब्रेन, देन यू कैन बी अवेक। ये फिजियोलॉजिकल साइंस है, फर्स्ट एमबीबीएस में सीखते हैं हम लोग उसको। ओके, तो उस दिन क्या चल रहा था, प्रसंग ये था कि अभी राम भगवान ने कहा है कि लक्ष्मण सीता को गुफा में बंद करो और बाहर पहरा दो, तब तक सीता की रक्षा करो और मैं अकेले अभी युद्ध करूंगा राक्षसों से। तो वहां पर खर, दूषण, यस प्रभु
सर, गोपुरपति चिल्ड्रन,
हाँ
श्लोकम,
हाँ श्लोकम, ओके ओके, आफ्टर कथा, ओके श्योर। तो इस कथा सुन रहे हैं बैठ के कि भी राम अकेले हैं और त्रिशिर और खर और दूषण बहुत गर्जना करके भयंकर आवाज करते हुए 14,000 सेना को लेकर आ रहे हैं। तो तुरंत ये उड़ गए, राम अकेले हैं, राम अकेले हैं, हाउ कैन आई सिट हियर, आर्मी आक्रमण, तैयार हो जाओ सब लोग। तो एवरीबॉडी क्या कर, राजा का आज्ञा है, उनको पता है कि ये तो रामायण तो कई लाखों साल पहले हो गया है, लेकिन राजा तो पूरे भाव में आ गए रामायण के, उसी में है वो, बाकी सब लोग इधर है, वो तो उधर पहुंच गए ऑलरेडी, मन से सबको आदेश देते आक्रमण, सब लोग सेना बजे तैयार हो जाए, ऑल मिनिस्टर्स गेट आर्म्ड अप, गेट क्लोज्ड अप, ड्रेस्ड अप, रेडी, चलो दंडकारण्य की ओर। कहाँ बैठे हुए हैं, त्रिवेंद्रम में बैठे हुए हैं, हाँ नहीं वो बाद में आएंगे, त्रिवेंद्रम में बैठे हुए हैं, और वो किधर है, नासिक में दंडकारण्य, वहाँ पर एक सीन चल रहा है। तो सारी सेना आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अभी जो प्रधानमंत्री था वो तो परेशान हो गया, बोले क्या करे, ही नोज दैट इज नथिंग लाइक दैट, वो सब कथा में हुआ, जिसका हुआ उसका वर्णन चल रहा है। राजा बोल रहे आक्रमण आक्रमण, जल्दी चलना है, बहुत देर से आराम से चलना नहीं है, वहाँ पर राक्षस आ चुके हैं। तो फिर सेनापति लोग क्या करते हैं, आइडिया करते हैं, कुछ सैनिकों को, एक बड़े नंबर के सैनिकों को घोड़े बिठा कर सबसे आगे भेज देते हैं और कहते हैं कि आप उल्टा यात्रा करके वापस आ जाओ, थोड़ा आगे जाओ और उल्टा लौट के आओ, और सब उनको सेटिंग कर देते हैं। तो वो जाते हैं आगे और ये सेना यहाँ आगे जा रही है, उससे अग्रस्थान में राजा कुलशेखर है, जा रहे जोर से आक्रमण, और वहाँ से वो लौट के आते हैं, महाराज अभी प्रभु रामचंद्र ने एक घंटे के अंदर 14,000 राक्षसों का वध कर दिया है, खर दूषण और त्रिशिर तीनों मर चुके हैं, इसलिए आप चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तो राजा बिकम वेरी हैप्पी एंड दे गो बैक। अभी इतना बड़ा संग, देखो अभी कितना समय उसमें गया होगा ना, तैयार होने में, शस्त्र धारण करने में, आक्रमण में, व्यूह रचना में, कितना समय, कितने दिन तक उन्होंने यात्रा किया होगा, सो मच टाइम इज वेस्टेड, ऐसा उनको लगा। अभी इन्होंने क्या किया, वो पढ़ने वालों को गाइडलाइन दिया, कभी इसके बाद में कभी भी ऐसा प्रसंग नहीं पढ़ना है जिस राजा बिकम एक्साइटेड। तो उन्होंने क्या किया, हर रोज अपना गिना चुना जो अयोध्या वाला प्रसंग और वन वाला प्रसंग, जो कोई युद्ध वुद्ध कुछ नहीं, आराम से बैठ के वनवास कर रहे हैं, ऋषियों का संग कर रहे हैं। तो राजा अभिषेक हुआ, वहाँ पर उन्होंने बहुत साल राज्य किया, हजारों साल राज्य किया। तो वहाँ का जो खुशी खुशी का प्रसंग है बहुत कम कम है, और हमें ज़्यादा नहीं है, बाकी सब दुख का ही प्रसंग है। लेकिन वो उन्होंने सब काट छाट सेंसर करके उसमें जितना आनंद का प्रसंग है, जैसे कि सीता देवी का राम का मुलाकात हुआ बगीचे में, कितना आनंद का प्रसंग है। इट्स अ लव स्टोरी, यू नो, वेरी ब्यूटीफुल पोएटिक सॉन्ग्स एंड ऑल। फिर उनका धनुष तोड़ दिया भगवान ने, उधर कोई टेंशन नहीं है काम का। फिर शादी हुआ उनका, दशरथ महाराज चले गए अयोध्या से जनकपुरी में, वहाँ पर स्वागत किया गया, हजारों गायों का दान किया गया, फिर विवाह किया गया, फिर उनकी बारात निकली, फिर वापस गए, फिर वापस कट, कई कई प्रसंग का डिलीट, सब डिलीट। उसके बाद में वनवास पूरा डिलीट, उसके बाद दोबारा गए, राज्याभिषेक हुआ, बीच का सब डिलीट, फिर चालू, फिर हनुमान जी ने चने खाए, वो सब बता दिया उनको। तो ऐसे चलता रहा, लेकिन क्योंकि खुशी खुशी के प्रकरण जो है वो चल रहे थे, हर रोज इनके राज्य में उत्सव हुआ करते थे, कुछ खुशी का हुआ, भाई राम ने सीता को देखा, एंगेजमेंट होने वाला है, चलो भाई उत्सव मनाओ, सब जगह पंगत लगाओ, लोगों को कीर्तन बनाओ, सब लोग आनंद करो, डेकोरेशन करो, सब सुगंधित जल छिड़काओ, हाथी से शक्कर बांटो, ऐसा आनंद रोज का, रोज राज्य में उत्सव ही उत्सव। एक दिन जो पढ़ने वाले फिक्स लोग थे वो किसी इमरजेंसी के अंदर चले गए बाहर, तो उस व्यक्ति का जो बालक है उसको बिठाया गया, और उसको उन्होंने पूरा ओरिएंटेशन नहीं दिया। ध्यान रखना हमेशा जब व्हेन यू डू हैंड ओवर ना, तो यू शुड गिव प्रॉपर ओरिएंटेशन, अदरवाइज गड़बड़। ध्यान में रखना, कभी भी किसी को काम करने वाले व्यक्ति को अगर छुट्टी लेना है तो उसका काम दूसरे को देकर पूरा ओरिएंट करके जाना चाहिए, खाली काम देकर भागना नहीं चाहिए। अब इन्होंने काम दिया उनको इमरजेंसी में, लेकिन बताया नहीं कि गाइडलाइन क्या है। तो उसने क्या किया, उसने वो प्रसंग पढ़ना शुरू कर दिया कि सीता देवी का हरण हो चुका है। मतलब पहले तो उन्होंने शूर्पणखा का अपमान किया, तो फिर राक्षस ने आक्रमण किया, तो वो तो हो गया प्रसंग। उसने उसका आगे का प्रसंग पढ़ा कि एक्चुअली रावण ऋषि बनकर आया और सीता को उठा के लेके गया, रास्ते में जटायु ने हमला किया और जटायु का भी उसने पंख काट के उसका वध कर दिया। अभी दक्षिण की ओर ले गया सीता को, वो समुद्र पार करके लंका में चला गया और अशोक वाटिका में उसने बंदिस्त कर दिया सीता मैया को। तो ये यहाँ पर एकदम पूरा एक्साइट हो गया, कंप्लीटली गॉट एक्साइटेड, सेड राम, राम इज सर्चिंग, राम रो रहे हैं, वृक्षों को, बेली को, पंछियों को, वन देवताओं को, सबको पूछ रहे हैं, तुमने कहीं मेरे मृगनयनी सीता को देखा है? छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, सीता कहाँ है, पता नहीं कहाँ चले गई है, कोई आइडिया नहीं, कोई क्लू नहीं है, कोई दिशा नहीं है, ढूंढ रहे जंगल में सब जगह पर, बन बन ढूंढत राम, भटक रहे मेरे राम, लीला करत श्री राम, लीला करत श्री राम, रो रहे हैं। तो दोबारा ये उठ गए, मेरे प्रभु अकेले भटक रहे हैं, सीता देवी को रावण ले गया है, हम लोग यहां बैठ के क्या कर रहे हैं, कथा बंद करो, सेना आक्रमण। फिर परेशान हो गए सब लोग, अरे इसको ओरिएंट नहीं किया था क्या, भाई क्या करें, टू लेट नाउ, राजा ने आज्ञा दे दी। अभी प्रधानमंत्री हताश हो गए, सबको तैयार होके चिलखत पहन के शस्त्र धारण करके घोड़े लेकर सब निकलना पड़ा। अब इस बार थोड़ा पास में था त्रिवेंद्रम से, तो ये लोग रामेश्वर तक आए सीधा लेकर। अब आगे ब्रिज ब्रिज तो भगवान ने तोड़ दिया था पहले ही ना, तो 1 किलोमीटर नीचे है जमीन के। तो ये ना घोड़ा लगकर सीधा घुस गए समुद्र के अंदर, हाथ में तलवार लेकर आक्रमण आक्रमण करके, मानो 800 मील का जो अंतर था वो मानो वो तैरने वाले थे पूरा, इतना शक्ति उनके अंदर, इतनी प्रेरणा, इतनी चेतना, इतनी भावना थी उनके अंदर, साक्षात रामायण के समय में जी रहे थे वो, कितना भाव रहेगा उनका। हम लोग यहाँ बैठ के हंस रहे हैं, लेकिन राजा का भावना क्या होगा, सब लोग बोल रहे महाराज मत जाओ मत जाओ, फिर भी ये बोल रहे जाओ आक्रमण, तलवार को ऊपर लेके जा रहे हैं। इनका भाव देखकर अभी प्रधानमंत्री को लगा अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, लास्ट टाइम तो हम लोग आगे जाकर पीछे आ गए थे, यहाँ से आगे कैसे जाएंगे हम, आगे जाकर पीछे आने की आइडिया अच्छी है लेकिन जाएगा कौन इनके आगे, सबसे तेजी से आगे तो वो जा रहे हैं खुद, हम लोग नहीं इतना प्रयोग कर पा रहे हैं। फिर सब लोग हताश हो गए, भगवान से प्रार्थना कर, भगवान राम अभी आप हमारे प्रिय राजा को बचा सकते हैं। तो क्या बताऊं, क्या चमत्कार हुआ, प्रभु रामचंद्र सीता को लेकर, सुग्रीव हनुमान जांबवंत को लेकर प्रकट हो गए वहां पर बीच समुद्र के अंदर। उन्होंने कहा कुलशेखर देखो मैंने रावण का वध कर दिया है, देखो जो सीता को उन्होंने अशोक वाटिका में बंद करके रखा था, देखो मेरे साथ में लेकर आया हूं मैं, ये देखो मेरे साथ सुग्रीव हनुमान जांबवंत सब लोग थे, इनके साथ में मैंने स्वयं युद्ध करके सीता को छुड़ा कर लाया है, कुलशेखर चिंता मत करना आप लौट जाना। तो इस तरह से राजा कुलशेखर ने बीच समुद्र के अंदर भगवान रामचंद्र का दर्शन प्राप्त किया। इमेजिन, ये दूसरा प्रॉब्लम हुआ ना, ये सेकंड टाइम प्रॉब्लम हुआ। तो राजा फिर धन्य होकर लौट के आए तो सभी लोगों ने समझ लिया कि ये सब जो प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, बार बार ये एक्साइट होकर जाते हैं, इनका सबका कारण जो है वैष्णव संघ है। ये साधुओं के संघ में बैठकर सुनते हैं ना तो गड़बड़ हो जाता है सब। अभी कैसे भी करके साधुओं के वैष्णवों के ऊपर की श्रद्धा जो उनकी है उसको तोड़ना चाहिए। तो जो भगवान का सेवा दिया था ना उनको, अनंत पद्मनाभ जी का, सब साधुओं को, सब अभी राज्य में पूरा साधुओं का ही राज्य है, सब जगह पर भगवान के सेवा उनके हाथ में है, प्रसाद बांटना उनके हाथ में है, एवरीथिंग साधुज आर कंट्रोलिंग, मिनिस्टर्स आर असिस्टेंट ऑफ साधुज, सर्विंग साधुज, साधुज आर द टॉप पीपल। तो उन्होंने क्या किया, मिनिस्टर लोगों ने, प्रधानमंत्री ने प्लॉट किया, उन्होंने भगवान के अलंकार के भंडार में से एक बहुत कीमती अलंकार जो है वो चुरा लिया, मतलब निकाल लिया, चुराने का उनका ही था, निकाल के ले लिया और साधु के झोले में डाल दिया और सब जगह बवाल फैला दिया, अरे भगवान के भंडार में से एक कीमती अलंकार गायब हो गया है। तो सब लोगों के उधर वो ना, वो रजिस्टर हो गया गुना, उसका इन्वेस्टिगेशन सर्च चालू हो गया, सब सैनिकों को भेजा गया। तो सर्चिंग में मालूम पड़ा कि इनका चाबी तो खाली साधुओं के पास में है, चलो तलाशी लो उनकी। तो साधुओं का तलाशी लिया तो एक साधु के झोली में वो अलंकार मिला, तो उनको भगवान के राजा के सामने लेके आए, राजा इनके ही हाथ चाबी था, इनका ही अधिकार था उधर, हमको डाउट था तो इनके ही झोली में ये अलंकार मिला है, इसका सब प्रूफ है, ये विटनेस भी है, ये सब प्रूफ है, इनको अरेस्ट किया जाए। इतना सब होने पर भी राजा कुलशेखर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि हमारे वैष्णव ऐसा कर सकते हैं। इतना सारा प्रूफ विटनेस खड़ा करने के बाद भी, वन टू वन प्रूफ देने के बाद भी उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने क्या किया, एक ऐसे भयंकर होता है, क्या बोलते हैं इसको, मधुमक्खी की तरह एक कीटक होता है, तो वो कीटकों का एक बड़ा बर्तन मंगाया उसने और पूरे भर के कीटक मंगाया उसके अंदर, समझ में आपको आया, एक बड़ा बर्तन जो हजारों कीटकों से भरा हुआ है, जो विषैले दंश करने वाले कीटक हैं, और उसने बोला कि मैं अपना हाथ जो है उसके अंदर डालता हूँ, अगर सच में इनमें से किसी वैष्णव ने वो अलंकार चुराया होगा तो मेरे हाथ को वो कीटक काटें और उनके विष से मैं मर जाऊँगा, और अपना हाथ डाल दिया उसके अंदर। सब प्रजा मंत्री सब जो है बोले, अरे हमने तो अच्छा योजना बनाया था लेकिन उसका कुछ आखिरी अंक हमने सोचा नहीं था क्या होगा, उसका लास्ट पोर्शन में क्या होगा, तो हमारे हाथ के बाहर जा रहा है, राजा मर जाएंगे। देवर लविंग द किंग, ऐसा नहीं कि वो राजा के खिलाफ थे, राजा का जो अवस्था होता था ना वो सब भयंकर अवस्था, वो देखकर उनको दुख होता था। तो उन्होंने अपने मटेरियल थिंकिंग सोचा कि भाई वैष्णव का श्रद्धा तोड़ दिया तो ये कथा वथा बंद हो जाएगी, फिर नॉर्मल लाइफ चालू हो जाएगा। लेकिन राजा ने ऐसा धर्म संकट खड़ा कर दिया कि राजा भी मरने को आने वाला है, मरने वाला है अभी कुछ समय के बाद में। हाथ डाला, बहुत देर तक रखा लेकिन अंदर के एक भी कीटक ने उनको काटा नहीं। तब उन्होंने ऐलान किया कि आप सब लोग झूठे हो। वो कहते ही सब लोग उनके आंखें सामने झुक गए, बोला हमारा ये षड्यंत्र था, हमने ये सब प्लॉट बनाया था। जब ये घटना हुई तो उनका वैष्णवों पर श्रद्धा तो बिल्कुल कम नहीं हुई, उल्टा दुगना, पहले तो हिल गए थे कि भाई क्या है सत्य क्या है, और उन्हें खुद पर एक डाल दिया कसौटी ताकि सत्य उनको मालूम पड़े, और भगवान ने भी उनकी प्रामाणिक भावना को रिस्पॉन्स दिया और सत्य उनके सामने प्रकट कर दिया कि यस ये चोरी वैष्णव ने नहीं की थी, और उनको उन्होंने मजबूर कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए हमने ही षड्यंत्र किया था। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई सब लोगों ने माफ़ी मांग ली कि प्लीज़ फॉरगिव अस, हमने ये षड्यंत्र किया था, ऐसे ऐसे कारण से किया था, तो उन्होंने माफ़ भी कर दिया उनको। लेकिन उनकी अपनी मंत्रियों पर का श्रद्धा की वो ख़त्म हो गई और अपना राज्य को उन्होंने शिफ्ट कर दिया और वहाँ से वो श्रीरंग में आ गई उसके बाद में। और जब श्रीरंग में आए तो उसे कुलशेखर राजा ने अपने पुत्र को राजा बना दिया और वहां से अपना राज्य छोड़कर वो श्रीरंगम में आ गए अपनी कन्या के साथ में। उनको एक कन्या थी और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह भगवान रंगनाथ से कर दिया, ये भी लिखा गया है। और वहाँ से वो रहते हुए दिन रात भगवान का भजन करते थे और अयोध्या, चित्रकूट, तिरुपति, कांची, श्रीरंगम इस जगह की यात्रा करते थे। और बचा हुआ सारा जीवन उन्होंने विरक्त भावना में श्री रंगनाथ ने रंगनाथ के भजन में बिता दिया। ऐसे कुलशेखर राजा। सो ऐसे महान भक्तों का यहाँ पर निवास हुआ है। एक और भक्त है जो मैंने कई बार बताया आपको, मैं बताऊंगा श्रीरंग में, बताऊंगा श्रीरंग में, उनका नाम क्या है? अंडाल, अंडाल। ओके, उनका भी यहाँ पर निवास हुआ है। ये महीना जो है मार्गशीर्ष का, ये विशेष रूप से अंडाल की सेवा में समर्पित है। मार्गशीर्ष मंथ इज सपोज टू बी द मंथ ऑफ वर्शिप ऑफ अंडाल देवी। ये 12 अलवार में से एक स्त्री अलवार है। तो पेरिया अलवर मतलब एक व्यक्ति का नाम है विष्णु चित्तर, ये पेरिया अलवर नाम से भी जानते हैं, इनके पिताजी भी अलवर थे। ये बहुत सिंपल व्यक्ति थे, इनका खुद का एक गार्डन था तुलसी का, वहाँ पर वो तुलसी उगाते थे। और तुलसी जल सिंचन करना, तुलसी को बढ़ाना, तुलसी से पौधे पत्ते निकालना, उनकी माला बनाना और अपने घर के विष्णु भगवान को अर्पण करना, ये उनका जीवन था। होल लाइफ एंड सोल इज ओनली दैट मच। तो दिन भर वो भगवान की सेवा करते थे और जीवन का उनका सर्वोच्च उद्देश्य विष्णु भगवान को संतुष्ट करना था। तो महाराज जी कहानी बताते, कृष्ण मुझे पूछा था बीच में कि ये क्या है, आपने पूछा था ना कि द्वारका की लीला क्या है, क्योंकि नारद मुनि एक बार भगवान को लेकर द्वारका से लेके जाना चाहते थे। तो उस समय सभी कृष्ण भगवान की पत्नियां वहाँ पर आई और उन्हें विनती किया, नारद मुनि मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। तो नारद मुनि ने कहा एक काम करो, आप लोग भगवान के स्वर्ण तुला करो, तुला तुला करो, जितने आपके अलंकार है उतार के डाल दो और फिर उतने अलंकार मिलेंगे तो भगवान को छोड़ दूंगा, मैं नहीं लेके नहीं जाऊँगा। सब रानियों ने अपने सारे अलंकार डाल दिए पलड़े में, लेकिन भगवान ही भारी रहे, अलंकार का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तब रुक्मिणी ने जाकर क्या किया, एक तुलसी का पत्ता रख दिया, फिर भगवान इक्वल हो गए। तो तुलसी के महात्म्य में ये कहानी बताते हैं कि तुलसी कितनी महान है। तो वो तुलसी की रोज़ वो सेवा करते थे। एनीवेज, तो एक दिन विष्णु चित्त जो है, उनकी कथा ऐसी आती है कि एक राजा थे, उस राजा के यहाँ पर डिबेट हो रहा था। राजा को भी बहुत बहुत राजा यहाँ पर हुए, उसमें से एक राजा थे। उनको कुछ समय बाद में ऐसी विरक्ति हुई कि सत्य क्या है पता चलना चाहिए। तो एक ऋषि ने बताया कि आप यहाँ पर क्या करो, सभी साधुओं का एक मिलन बनाओ, एक सम्मेलन बनाओ और वाद विवाद रखो, उसमें जो श्रेष्ठ साधु होगा उसको आप गुरु के रूप में स्वीकार करो। तो यहाँ पर सब लोगों को बुलाया उन्होंने वाद विवाद के लिए। तो भगवान विष्णु इस विष्णु चित्त के स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि आपको वहाँ जाना है वाद विवाद करने के लिए। थोड़ा मैं क्यों वहाँ पर जाऊँ, मेरा काम क्या है, मैं तो पंडित भी नहीं हूँ, मेरा तो खाली तुलसी बनाने का काम है, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ। बोले मेरी इच्छा है ये कि आप जाओ। बोले वहाँ पर जाके बोलूँगा क्या, मैंने कोई शास्त्र का अध्ययन तो किया नहीं है मैंने। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपके मुख से बोलूँगा, आप जाओ, डोंट वरी। भगवान का आदेश लेकर गए वो उधर, और वो जब एंट्री किया उन्होंने तो उनके शरीर से इतना प्रकाश निकला कि राजा बहुत आकर्षित हो गए। उन्होंने उनको बड़े आसन में बिठाया, उनका सत्कार किया, चरण धोए, उनकी पूजा की, ब्राह्मण ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मवृंद के रूप में, हाँ ब्राह्मण देवता के रूप में, और उनसे वाद विवाद शुरू करवाया। और उनने ऐसे ऐसे भगवान के विषय में तत्व बताए, भगवान की सेवा के बारे में बताया कि सभी आए हुए ऋषिगण थक हो गए, एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। और उसी जगह पर तुरंत राजा ने विष्णु चित्त से दीक्षा ग्रहण किया। अचानक ओवरनाइट ही बिकेम अ फेमस गुरु, बिकॉज द किंग बिकेम अ डिसाइपल। एनीवे विष्णु चित्त वापस अपने गांव में आए, फिर वही काम करने लगे, कोई बड़े गुरु वगैरह उन्होंने अपना अधिकार नहीं जमाया, वापस अपने गांव में आए, वही काम वापस शुरू किया, शांति से अपने घर के विष्णु का सेवा शुरू किया। तो एक दिन जब विष्णु चित्त अपने तुलसी के गार्डन में खुद काम कर रहे थे तो उनको वहाँ पर एक सुंदर सुनहरे रंग की कन्या प्राप्त हुई। जैसे राजा जनक जब अपने यज्ञशाला के लिए जमीन को नांगर कर रहे थे ना, वहाँ से सीता देवी का, भूमि देवी से निर्माण हुआ, उस समय एक सुंदर कन्या जो है जमीन से प्राप्त हुई उनको, और आकाशवाणी हुई कि ये आपकी कन्या है, इसका लालन पालन करो। शास्त्र में लिखा है ऐसे कि जो भगवान की 16108 पत्नियां थी, उसके अंदर 16100 तो जरासंध के जेल से आई थी, और 8 उनकी पटरानियां थी। हाँ, सबको नाम याद है उनका? बताओ क्या क्या नाम याद है बताओ, कम से कम वट एवर यू रिमेम्बर, आई ऑल्सो विल ट्राई टू रिमेम्बर। एक रुक्मिणी, सबको याद है रुक्मिणी, सत्य मामा, जाम्बुवती, हाँ, कालिंदी, यस, लक्ष्मणा, कौन, भद्रा, सत्यमामा हो गया बाबू जी, यस यस, कितना हो गया, दो बाकी, सत्या और एक मित्रविंदा बाकी है, सत्या नहीं, सत्या ही सत्यमामा ओनली। तो मित्रविंदा है नग्नजीती, नग्नजीती नानी एक रानी थी जिसको प्राप्त करने के लिए भगवान को 7 क्या कहते हैं उसको, 7 बैलों को टेम करना पड़ा, मतलब शांत करना पड़ा, जो बहुत ही व्हाट यू से इन हिंदी आई डोंट नो, वाज वर एजिटेटेड कम्प्लीटली वायलेंट, से 7 बैल थे, उनको एक ही साथ में कंट्रोल करना और हाथ में लाना, ये उनके प्रण था। तो भगवान ने वो प्रण जीता और नग्नजीती को विवाह करके लाया। तो वो नग्नजीती जो है वो अंडाल बनकर आई विष्णुचित्त के पुत्र के रूप में। तो श्री संप्रदाय का ये विश्वास है, उन्होंने श्री संप्रदाय के शास्त्रों में लिखा है नग्नजीती ये अवतार लेकर आई। तो बचपन से ही नग्नजीती जो अवतार लेकर आई अंडाल के रूप में, वो भगवान के प्रेम में विरह में इतनी व्याकुल रहा करती थी कि दिन भर आकाश में, दिन में चांद को, सूरज को पुकारती थी कि तुमने कृष्ण को कोई देखा है, रात को चांद को पुकारती थी हैव यू सीन कृष्णा। आते जाते सब साधुओं को मंदिरों में जाकर सब जगह पर कुछ पुकारती रहती थी, कृष्ण 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 कर, वेर इज कृष्णा, वेर इज कृष्णा, आकाश में तारों को सितारों को पूछती थी। और वो भी अपने पिता को हर रोज तुलसी माला बनाने में सहायता करती थी, पिताजी तुलसी के पत्ते निकाल कर आते थे, ये इसकी माला बनाती थी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, अलौकिक सुंदर था उसका। लेकिन एक अद्भुत कार्य वो रोज करती थी, जब तुलसी की माला बनाती थी उसके बाद में तुलसी माला खुद पहनती थी और आईने में अपना सौंदर्य देखकर रहा करती थी। ये रोज का काम था उसका, लेकिन पिताजी को मालूम नहीं था, वो तो माला बना कर लेके आते थे फिर वो विष्णु को पहनाते थे। एक दिन पिताजी जल्दी आ गए देखने के लिए माला बना बनी कि नहीं बनी, तभी ये माला पहनकर आईने में देख रही है, खड़ी है अपने आप। तो बड़ी वो परेशान हो गए पिताजी, अरे ये क्या कल्चर है तुम्हारा, भगवान को माला अर्पण करने के बदले खुद को श्रृंगार करके अपना सौंदर्य निहार रही है आईने में, कैसी भक्त है तू। बहुत डांटा उन्होंने उसका और वो माला कैंसिल कर दिया कि ये माला नहीं पहनाना है भगवान को। तो उस दिन भगवान को माला नहीं पहनाई गई, क्योंकि माला वही बनी हुई थी जो इसने पहन के रखी थी। रात को सपने में विष्णु भगवान आए, विष्णु चित्त के सपने में, उन्होंने विष्णु चित्त को बहुत डांटा कि आप क्या समझते हो, माला पवित्र हो गई, तुम्हारी कन्या ने माला पहनने के बाद वो शुद्ध हो जाती है, अशुद्ध माला शुद्ध हो जाती है तब उसमें मेरे पहनने लायक हो जाती है, इसलिए मैं वही माला पहनूंगा जो अंडाल सबसे पहले पहनेंगी, उसके बाद मैं स्वीकार करूंगा। उसके बाद मैं ये नियम बना कि रोज उसको पहनाने के बाद में विष्णु भगवान को क्या करे, स्वयं भगवान ने आगे आदेश दिया तो कौन क्या कर सकता है उसको। तो उसके बाद में फिर बड़ी हो गई वो, फिर ये क्रम चलता रहा ऑफिशियली, पहले था अनऑफिशियल, अभी ऑफिशियल हो गया। उसके बाद में यथावकाश बड़ी हो गई वो, विवाह के योग्य हो गई। तो पिताजी ने कहा विवाह करना है, तो उन्होंने कहा मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैंने अपना हृदय कृष्ण भगवान को दे दिया है, विष्णु को दे दिया है, उसके अलावा मैं किसके साथ विवाह नहीं कर सकती। अभी ये कोई पिता समझो, अभी मैं हूँ, मेरी बेटी है, मुझे बोलेगी कि मुझे खाली कृष्ण से विवाह करना है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, हाउ डू आई अरेंज दैट मैरिज, आई डोंट नो हाउ टू अरेंज दैट मैरिज। हाँ, तो पिताजी के लिए आपको लगा वाह वाह कितनी बड़ी भक्त है उसकी लड़की, बट ही इज विद अ प्रॉब्लम, ही डजंट नो हाउ टू डू इट। तो उसने क्या किया, भाई तुमको कृष्ण के कौन से रूप से शादी करनी, तो वो कुछ नहीं बोल रही है। तो फिर उन्होंने 108 कृष्ण के रूपों का वर्णन किया उसको, गोपाल का किया, नरसिंह का किया, वामन का किया, हाँ, हर भगवान के जो जो उसको पता थे 108 भगवान के रूपों का वर्णन किया, और लास्ट में रंगनाथ का सौंदर्य का वर्णन किया। जैसे रंगनाथ का सौंदर्य का वर्णन सुना तो ये तुरंत शर्मा गई। तब पिताजी समझ गए कि इनको रंगनाथ से विवाह करना है। तभी रंगनाथ से विवाह करने को आसान बात है क्या? हाँ सोचो आप जरा, आपकी लड़की बोल रही है मुझे रंगनाथ से विवाह करना है, अरे वहाँ पर एंट्री मारने के 4 घंटे लाइन लगाना पड़ता है, वो भी 2 मिनट के लिए खड़ा करते हैं उधर 1 मिनट के लिए। वो कभी आप प्रपोज करेंगे, कभी वो मैरिज का एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस नो एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे, सच ए डिफिकल्ट सिचुएशन। बट जब भगवान कुछ सोचते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बड़ी आसान बन जाती है। हाँ तो उसी दिन जब इसने पिताजी को बताया कि मुझे रंगनाथ से विवाह करना है, तो उसी दिन रंगनाथ के पुजारी के सपने में भगवान आए, रंगनाथ जी। उन्होंने कहा जाओ विष्णु चित्त के घर पर जाओ और उसकी कन्या जो है उसके बाद मुझे विवाह करना है, यहाँ से पैलंकिन भेजो उसके लिए, सारी सेना भेजो, सारे ब्राह्मण भेजो, अलंकार भेजो, सब कुछ, मेरी पत्नी होने वाली है वो, जो भी जरूरी है वो सब करने के लिए सारी व्यवस्था यहाँ से होनी चाहिए। उसी के समय विष्णु चित्त के सपने में भी भगवान आए रंगनाथ जी। उन्होंने कहा कल मैं पालकी भेज रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर, मुझे आपके कन्या से विवाह करना है, सच सच के तैयार रखना, कल मैं पालकी भेज रहा हूँ, उसको भेज देना। तभी उसका काम आसान हो गया। अगर वो खुद सोचते कि पालकी मंगवानी है रंगनाथ से तो मुमकिन था क्या उसको? जस्ट इमेजिन, इज इट पॉसिबल? बट वेन यू आर अ सिंसियर डिवोटी, कृष्णा अरेंजेस फॉर यू एवरीथिंग। ये हर भक्त के जीवन का अनुभव है। कठिन से काम जो है बड़े आसान होते हुए नजर आते हैं। बृहद भागवतम में लिखा हुआ है, ऑल द ग्रेट ग्रेट डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ ऑफ अ डिवोटी हु लव्स कृष्णा बिकम्स वेरी सिंपल इन द एंड। ऑल दोज डिफिकल्टीज विच कम इन द लाइफ ऑफ अ डिवोटी बिकम ब्लेसिंग इन द एंड बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड बिकॉज दोज डिवोटीज लव कृष्णा। कृष्ण भगवान पर प्रेम करने वाले व्यक्तियों के जीवन में कितनी भी कठिनाई आती है वो अंतिमतः उसके लिए वरदान बन जाती है, बिकॉज कृष्णा ट्रांसफॉर्म्स ऑल द डिफिकल्टीज टू ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर डिवोटीज एंड बिकॉज ऑफ डिवोटीज लव फॉर हिम। इस तरह से विष्णु चित्त की जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कैसे किया जाए, भगवान ने उसको बड़ी आसानी से कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया उसको, कोई करना ही नहीं कुछ अभी। तो यहां से लेकर कई पालकियां गई, कई पालकियां तो अलंकार भर के चली गई, कई ब्राह्मण उन्हें श्लोक बोलते गए, कई सैनिक गए रक्षा करने के लिए आगे पीछे, पूरा अरेंजमेंट पूरा सिक्वेंस। हाँ और यहाँ घर पे पहुंचे तो अंडाल जो है ये जानती थी कि भगवान ने बुलाया मुझे विवाह करने के लिए, दुल्हन बनकर तैयार थी। उसको ऐसे पालकी में बिठाया गया कि जिसमें अंदर से सब बाहर का सौंदर्य नज़ारा जो उत्सव प्रियता वातावरण में है वो सब नज़र आ रही है, लेकिन बाहर से अंदर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो भगवान की होने वाली पत्नी है, वो कोई दर्शन नहीं करना चाहिए उसका, ओनली द दुल्हा विल सी हर। तब तक क्या करते हैं, घूंघट ओढ़ के रखते हैं, उसे पूरा उसका श्रृंगार करके बंद पालकी में डाल के पूरा वाद्य वृंद गीत गायन ब्राह्मणों का श्लोक ऐश्वर्य के साथ में उसको वहाँ से लेकर पूरा रंगनाथ जी के मंदिर तक लेके गए। उसके बाद मंदिर में अंदर प्रवेश करके पालकी सीधे गर्भगृह में लेके गए और तब जाकर वो पालकी से उतरी। जब कहा गया कि रंगनाथ जी का स्थान आ गया है, रंगनाथ जी सामने विराजमान है, तब ये पालकी से उतरी, तब सबसे पहली बार सभी पुजारियों ने देखा कि कौन दुल्हन है और कुछ से बेहोश से हो गए, उसका सौंदर्य और भक्ति का तेज देखकर सब बेहोश जैसे हो गए। उन सबके सामने बड़े ही हिरनी की चाल से बहुत ही आकर्षक तरीके से वो उतर के अंदर चली गई, भगवान के चरणों को स्पर्श किया और सबके आंखों के सामने भगवान के चरणों में विलीन हो गई। शी डिसअपीयर्ड इन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा श्री रंगनाथ जी। सब लोगों ने अपने आंखों के सामने ये चमत्कार देखा कि सो कॉल्ड हाँ शरीर वाली हार्ड मास वाली कन्या आपके सामने से निकल गई, हाँ और आपके सामने अदृश्य हो गई भगवान के चरणों में। सब लोगों ने जय जयकार किया अंडल का। इसलिए आज भी रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर एक मंदिर है, रंगनाथ जी मंदिर में एक बड़ा शहर है उधर, एक इट्स अ बिग सिटी इनसाइड, उसके अंदर कई मंदिर है, कई मंदिर अनंत मंदिर है उसके अंदर। उसके अंदर एक मंदिर है जहाँ पर रंगनाथ जी भगवान खड़े हैं, मूल रंगनाथ जी सोए हुए हैं ना, वहाँ रंगनाथ जी खड़े हैं, उनके सामने दुल्हन बनकर अंडाल खड़ी है, उनके विवाह का दृश्य है वहाँ पर उस मंदिर में। वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, वो भी आपको दर्शन कर सकते हैं, कल सुबह जाएंगे तो आप इधर उधर दर्शन करना। और कई मंदिर है, हम कल रामेश्वर में गए थे, उधर दरबाशयन में गए थे, सब जगह पर अंडाल का मूर्ति है, क्योंकि अंडाल का भक्ति जो है पूरे साउथ इंडिया में बड़ा फेमस है, एवरी वन नोज, लाइक महाराष्ट्र में कैसे तुकाराम सब जगह फेमस है, एवरी वन नोज तुकाराम, उस तरह से अंडाल ये व्यक्तिमत्व जो है पर्सनैलिटी ये साउथ इंडिया में बड़ी फेमस है। तो ऐसे ऐसे महान भक्तों का बारे में यहाँ पर बैठ कर श्रवण करना बड़े भाग्य की बात है, उनके बारे में बोलना, उनकी इतिहास को याद करना, उनके भक्ति को याद करना, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेना, टू गेट इंस्पायर्ड बाय द पर्सनैलिटी, इट्स अ ग्रेट फॉर्चून फॉर विच वी हैव कम हियर। यही कहानी हम बम्बई में भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर बैठकर उस कहानी को दोहराना ये बहुत विशेष बात है। इसलिए मेरी भी नींद उड़ गई, आपकी भी उड़ गई होगी शायद क्योंकि भक्ति ऐसी है अंडाल। हाँ, तो ये हमारा भाग्य है, परम भाग्य है कि हम लोग श्रीरंगम में आए हैं। तो ये ऐसे महान महान भक्त हैं। तो अभी हमारा अच्छा, कल आप सब लोग जाएंगे श्री रंगनाथ जी के मंदिर में, है ना? तो रंगनाथ जी के मंदिर में सबको अपने अपने जिम्मेदारी पर दर्शन लेना है, हाँ, क्योंकि ग्रुप दर्शन वहाँ पर कराना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल। कल तो हमने कोशिश किया था, थोड़ा फेल हो गया उधर, बहुत लोगों को यश मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला। कल के दिन में आपको टाइम दिया जाएगा और वो टाइम के बाद में, उस टाइम के अंदर आपको फ्री दर्शन करना है, 100 में करना है, 250 में करना है, 4 बजे करना है, 3 बजे करना है, वो सब आप तय कर लो, सब टू यू। हमारा प्लानिंग जो है आएगा, हमारा जो प्लानिंग है वो सुबह 8 से 10 तक हमारी कथा होगी, ओके, 7 से 7:30 तक ब्रेकफास्ट होगा और 7:30 को हम लोग निकलेंगे और एक महान भक्त के घर में जाएंगे, इसका नाम है वेंकट भट्ट, जिसके घर में चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीने तक निवास किया था। लॉन्गेस्ट चैतन्य महाप्रभु स्टेड एनीवेयर इन इज होल लीला इधर वेंकट भट्ट हाउस फॉर 4 मंथ्स इन अ रो ही स्टेड देयर। तो वहाँ पर बहुत सुंदर कथा है, वो आपको बताएंगे। उसके बाद में ये सब रंगनाथ का इतिहास, महात्म्य, रंगनाथ के बारे में पूरी जानकारी के साथ में आप उनका दर्शन करने के लिए मंदिर जाएंगे और उसके बाद में आप लौट के आएंगे, फिर कावेरी में स्नान करेंगे जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्नान किया है। जो कावेरी जो है वो चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत है, जहाँ पर महाप्रभु ने स्वयं स्नान किया है। और इस प्रकार से बीच में आज शाम को हम उत्तमार कोविल मंदिर जाएंगे, वहाँ पर भी कथा करेंगे। और इस तरह से कावेरी के स्नान करने के बाद में हमारी श्रीरंगम की यात्रा समाप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। तो उसमें एक स्थान है बीच में मंदिर में, उसका नाम है चंद्र पुष्करिणी, उसको पुकुर भी कहते हैं, पुकुर शॉर्ट फॉर्म है उसका। पुकुर का मतलब क्या है? जलाशय, जहाँ पर जल एकत्र करके कुंड के रूप में, सरोवर के रूप में विराजमान है। तो रामानुजाचार्य जो है वो उस कुंड में एक बार गए, उन्होंने केवल उस कुंड में हाथ धोया, केवल हाथ धोया, तो क्या चमत्कार हुआ, उसमें जितनी अनंत मछलियाँ थी वो ऐसे उछल गई जल के साथ में, ऐसे ऊपर जल का लेवल ये है, वहाँ पर कितनी ऊंचाई तक उछली हो, और जैसे वो उछली सभी मछलियों को विष्णु स्वरूप प्राप्त हुआ, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, 4 भुजा वाले वैकुंठवासी का शरीर प्राप्त हो गया उनको, वैकुंठवासी बन गए और सबके लिए विमान आया और सब मछलियों को उद्धार करके वो मछलियों को सब वैकुंठ में लेके गए। तो प्रभुपाद के शिष्य थे अच्युतानंद स्वामी, उन्होंने कथा सुना तुरंत जंप मार दिया चंद्र पुष्करणी के अंदर। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि जो नम्रता उन मछलियों के अंदर थी वो अगर आपके अंदर होगी तभी ये चमत्कार हो सकता है। हाँ, शंकर जी को भी ऐसा कहा गया था कि आप मानसरोवर में जाकर स्नान करो तो गोपी का शरीर प्राप्त करोगे, क्योंकि उनको रासलीला में प्रवेश करना था। तो ललिता ने रोका उनको, सब सखियों ने रोका कि नहीं, आप तो पुरुष हो, इस मंडल के अंदर केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं और केवल स्त्रियों को वहाँ एंट्री है। तो कहते हैं आई डोंट नो ऑल दिस थिंग, मेरे को अंडर प्रवेश चाहिए, वो डेस्परेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ललिता देवी ने कहा कि आपको मान सरोवर में, जहाँ पर राधा रानी रोकर एक बार कुंड बनाया था उन्होंने पूरा, जब भगवान लेट आए, टाइम दिया था लेट आ गए, राधा रानी गुस्सा हो गई और वहाँ जाकर जमुना पार जाकर रोई और उनके अश्रुओं से, उष्ण उष्ण क्रोधपूर्ण अश्रुओं से पूरा सरोवर बन गया मान सरोवर, बहुत उत्कट स्थान है वो। तो गोपियों ने कहा कि वहाँ जाकर स्नान करोगे तो आपको गोपी का शरीर प्राप्त होगा, आप स्त्री बनोगे, फिर आपको प्रवेश मिल सकता है। तो वो भाग के चले गए, इतनी छलांग लगा के चले गए और झड़ाक से छलांग लगाई और गोपी शरीर प्राप्त होकर बाहर आ गए, और जो वहाँ से छलांग लगा के भागे भागे रास मंडल तक पहुँच गए। तो फिर गोपियां हंस पड़ी, लभी के हंसने का, अभी तो कन्या बन के आया ना मैं, क्योंकि जो सांप लटक रहे थे ना उनके ऊपर वो वैसे ही रहे, क्योंकि सांप को भाव नहीं था ना, भाव तो शिव जी के अंदर था, उस भाव से उन्होंने छलांग लगाई, इसलिए वो खुद गोपी बन गए, सांप सांप ही रह गए। अभी सुंदर कोई औरत अगर सर पे सांप, कंधे पे सांप, गले पे सांप, हाथ में सांप, तो कैसे दिखेगा उसी भी लुक। इसलिए सब सखियां हंसने लगी उनको देखकर। तात्पर्य क्या है कि मानसरोवर आज भी वहीं पर है, हम लोग ने कई बार स्नान किया है, हम लोग वैसे के वैसे रह गए, क्यों? क्योंकि हमारी भावना जो है ना वो अभी तक उतनी शुद्ध नहीं हुई है, जितना ईगरनेस और इतना उत्सुकता उत्सुक्य शिवजी के अंदर था उतना हमारे अंदर नहीं है, इसलिए कई बार स्नान करने के बाद भी हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। मानसरोवर वहीं पर है, हम भी वही हैं, बोथ आर सेम, सेम प्लेस सेम प्लेस, रिमेन द सेम। सो इस प्रकार से ये कहीं मैंने कहा क्यों बताया अभी आपको, चंद्र पुष्करणी के अंदर प्रभुपाद जी ने कहा हे अच्युतानंद स्वामी जी आपने छलांग लगाया, अच्छा किया, लेकिन जब तक आपके अंदर वो मछलियों की नम्रता नहीं आती है तब तक ये चमत्कार नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत सारे पवित्र स्थान दुनिया में हैं और बार बार उनका महात्म्य हम सुनते हैं और बार बार स्नान भी करते हैं, उनका सब कुछ करते हैं, हमारे अंदर उसका परिणाम क्यों नहीं दिखा सकता है, हम देखते क्यों नहीं उसका परिणाम, क्योंकि हमारी चेतना उसके लिए योग्य अभी तक बनी नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज तो बहुत सारे हैं लेकिन सबको उसके अंदर प्रवेश नहीं मिलता है, बहुत लोग ट्राई करते हैं, 20,000 लोग ट्राई करते हैं, 500 को प्रवेश मिलता है, क्यों? क्योंकि बाकी लोग डिस्क्वालीफाई हो गए ना उसके अंदर, उसी तरह से हमारी कहानी है। तो ये चंद्र पुष्करणी स्थान भी वहाँ पर है और इसी चंद्र पुष्करणी के किनारे में बैठकर धर्म वर्मा ने तपस्या किया था, रंगनाथ को अयोध्या से यहाँ पर लाने के लिए राजा धर्म वर्मा ने इसी चंद्र पुष्करणी के किनारे में बैठकर तपस्या किया था कई 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 साल तक, उसकी कृपा से भगवान रंगनाथ जी यहाँ पर आए, आगे जा रहे थे साउथ इंडिया में लंका की ओर, इसकी भक्ति और तपस्या की वजह से रुक गए। वो इतने महान भक्त है विभीषण, इतना त्याग किया उन्होंने, उनको बताते हैं सॉरी आई विल नॉट कम देर, ये मेरा भूलोक वैकुंठ है, इधर मैं रहूँगा, रह गए इधर ही। तो ऐसा सुंदर स्थान है और आगे मंदिर में एक सुंदर ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान के वसंत ऋतु का लीला करने का स्थली है, वसंत मंडपम कहते हैं उसको। रंगनाथ जी बहुत रसिक भगवान हैं, वो बाहर निकल कर बहुत सैर करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, अपने 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 मंदिर में अलग जगह जाते हैं, जैसे कि आप अपने घर में ये बेडरूम में कभी फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, कभी किचन में, कभी मंदिर में जाते हैं ना आप लोग, ग्राउंड फ्लोर के रूम में, कभी किचन में, आपका घर है, आप तो राजा हैं, अपने घर में कहीं भी आप आज दिल कर गए यहाँ सो जाएंगे, वहाँ सो जाएंगे, यहाँ खाना खाएंगे, यार हॉल में लंच लगाओ, ऐसे बोल सकते हैं आप। वैसे भगवान भी बहुत लीला करते हैं, व्यवहार करते हैं अपने मंदिर में। तो एक जगह है वसंत मंडपम जहाँ पर वसंत ऋतु में आनंद लेने के लिए भगवान आते, लेकिन जब रामानुजाचार्य का देहांत हो गया तो भगवान ने पुजारियों को प्रेरणा दिया, उन्होंने कहा कि इनका शरीर मेरे ही मंदिर के अंदर वसंत मंडप के अंदर आपको समाधि बनाना है। मंदिर के अंदर किसी भक्त की समाधि नहीं बनती है, मंदिर के बाहर होता है वो हमेशा। तो भगवान ने रामानुजाचार्य के प्रेम के कारण अपने वसंत मंडप का स्थान उनके समाधि के लिए दिया, भक्तों ने उनको समाधि बनवाया, समाधि में उनको शरीर रखा, उनका समाधि सिद्ध किया, संपन्न किया। 3 दिन के बाद में रामानुज आचार्य का शरीर समाधि से ऊपर आया, बैठे हुए अवस्था में, इन द सेम बॉडी। उनका बॉडी जब रखा गया तो उन्होंने ऐसा रखा होगा ना, तो बैठे हुए अवस्था में उनका मूर्ति समाधि तोड़कर ऐसे बाहर आया और आज तक वो उनका स्वरूप वहाँ दर्शन के लिए अवेलेबल है। तो आप कल जाइए और दर्शन कीजिए, जो शरीर जो बाहर आया वो भगवान की प्रेरणा से सब भक्तों ने उनको अलग अलग जड़ी बूटी लगा के आज तक उस शरीर को वैसे ही मेंटेन करके रखा हुआ है। 875 साल हो गए उनके शरीर को जाते हुए और आज भी शरीर आपको मिलेगा। 1137 इस ईयर, इस साल में उनका शरीर छूट गया। हाँ, 1017 इस साल में उनका जन्म हुआ था, 1137 में उनका शरीर छूट गया, तब से वो उनका शरीर उसी अवस्था में वहाँ विराजमान है, वो भी दर्शन जरूर करना आप। ऐसे और एक जगह है वहाँ पर हमको मिलने को मौका नहीं मिलेगा। रंगनाथ जी एक बार क्या हुआ, रंगनाथ जी की बहुत सखियाँ हैं, होगी उनकी 16,108 पत्नियाँ, अंडाल में उनकी पत्नी, फिर भी उनकी बहुत बाहर भी बहुत सखियाँ उनकी है। तो एक बार वो रंग क्षेत्र में घूमने चले गए और लक्ष्मी देवी उनको साथ में निकलती है। लक्ष्मी जी को एक जगह है थायर सन्निति, हाँ थायर सन्निति मतलब लक्ष्मी देवी वहाँ विराजमान रहती है और वहाँ पर उनको रंगनाथ जी मिलने आते हैं। तो एक बार उनको मिलने आए और अचानक गायब हो गए। बहुत देर बाद रात को लौट के आए, तो कैसे लौट के आए, सब जगह रंग लगा हुआ है, हाँ मतलब लग रहा है कि आनंद लेकर आ रहे हैं कहीं से। तो अभी देखो औरतों को तो कुछ बोलना नहीं पड़ता है, सब एक देख के समझ जाती है कहाँ से आए और क्या क्या करके आए होंगे। तो वो समझ जाती है कि अपने एक सखी को मिलने के लिए गांव गए थे, उस गांव में उसके हाथ से भोजन किया, उसके हाथ से झूला झुलवाया, उसके साथ में लीला किया, रंग पंचमी का त्यौहार मनाया, सब रंग लगाया और पूरा रंगे हुए आनंद लेते हुए लौट के आए। तो लक्ष्मी देवी को बड़ा गुस्सा आया, तो भगवान ने फिर उनको बहुत मनाया है उस जगह पर, बहुत मना मना के अपने सेवकों को लेकर भी उनको मनाया है, फिर लक्ष्मी देवी को शांत किया है। उसके बाद दोबारा लक्ष्मी देवी ने उनको स्वीकार किया है और फिर दोबारा दोनों साथ में प्रजा के सामने वहाँ प्रस्तुत हुए हैं। तो वह स्थान भी वहाँ पर है, उसका नाम है थायर सन्निति। हाँ एक और स्थान है वहाँ पर जहाँ पर जियर स्वामी बैठते हैं, वो जो गद्दी है मंदिर के बीच में एक विशेष जगह है, वहाँ पर केवल आज के तारीख में संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं जियर स्वामी बोलते हैं उनको, वही वहाँ बैठ सकते हैं और कोई बैठ नहीं सकता है। प्रवचन करना है तो वही बैठ के वहाँ प्रवचन कर सकते हैं, बाकी लोग ऐसे कहीं बैठ के प्रवचन कर सकते हैं लेकिन वही अकेले वहाँ बैठ कर प्रवचन कर सकते हैं। तो हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी को जियर स्वामी खुद हाथ पकड़ कर लेके गए और उस स्थान पर बिठाया, और उस स्थान से राधानाथ स्वामी, जियर स्वामी, पराशर भट्ट स्वामी, मुरली भट्ट स्वामी, ये सब लोग ने एक जगह बैठकर बहुत लंबा चारों ने प्रवचन किया, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। और एक मुकुट होता है, मुकुट फूलों का जो रंगनाथ जी को पहनाते हैं, विशेष मुकुट होता है, वो केवल जियर स्वामी को पहनाते हैं। उस दिन वो जियर स्वामी ने खुद न पहनकर राधानाथ स्वामी को पहनाया, ऐसा एक अनोखा जो साउथ इंडिया के हिस्ट्री में कभी होता नहीं है। और साउथ इंडिया के हिस्ट्री में कभी भी किसी फिरंगी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला है। ये जो मुरली भट्टार है ये वेंकट भट्ट के 16वीं पीढ़ी के आचार्य हैं और उनके पिताजी थे राजगोपाल आचार्य। इन्होंने ट्रेडिशनल साउथ इंडियन रंगनाथ के मंदिर के जो व्यवस्थापन कमेटी है इनके साथ बहुत देर तक संघर्ष किया, बहुत साल तक, कि प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर सब लोगों को भक्त बना दिया है। विदेश विदेश के लोग भक्त बने हुए, वैष्णव बने हुए हैं और ब्राह्मण का जीवन जीत बिता रहे हैं, ब्राह्मण के सब नियम पालन करते हैं, शरीर केवल उनका गोरा है, भाषा केवल फॉरेन की है लेकिन ये फर्स्ट क्लास वैष्णव बने हुए हैं। इनको रंगनाथ के मंदिर प्रवेश मिलना चाहिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने इतना आतंक कर दिया था, तब से उन्होंने अंग्रेज़ों के जाने के बाद में सब बंद कर दिया, किसी को हिंदू के अलावा किसको प्रवेश देना नहीं है। लेकिन राजगोपाल आचार्य ने मेहनत करके संघर्ष करके एक दिन उनका संघर्ष जो है उसको विजय प्राप्त हुआ और तब से प्रभुपाद के इस्कॉन संगठना के सारे विदेशी सन्यासियों को मंदिर में प्रवेश आरंभ हुआ। तो एक तो हमारे गुरुदेव विदेशी शरीर के हैं, उनका जन्म अमेरिका का है, तो मंदिर तो प्रवेश तो उनको मिल रहा है क्योंकि 100 साल से 50 साल से लोगों को प्रवेश प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक विदेशी सन्यासी को जियर स्वामी के पद पर बिठाना ये एक चमत्कार है, दिस इज़ अ मिरेकल, दिस इज, उसके बाद में भी पहले भी कभी हुआ नहीं था, उसके बाद में भी नहीं हुआ है, ऐसा है। तो इसलिए कल हम जब मुरली भट्टार के घर पे जाएंगे, उन्हीं के अंडर वो वेंकट भट्ट का घर है, उनके ही अधिकार में है, उनके नियंत्रण में है वो, तो दोबारा कल हम उनके सामने ये बात दोहराएंगे कि उनके पिताजी के संघर्ष की वजह से ही इसका उनके सारे भक्तों को रंगनाथ जी के मंदिर में प्रवेश प्राप्त हो रहा है आज भी। और केवल उनको ही नहीं, जो भी विदेशी लोग हैं जो पहले नहीं उनको प्रवेश मिलता था, उन सबको प्रवेश अभी प्राप्त होने लगा है। हरे कृष्णा, श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। हाँ अच्छा, अंदर एक और भी काफ़ी स्थान है, भी क्या एक शहर है पूरा अंदर उसके, एक जगह है जहाँ पर विरजा नदी का स्थान है, हाँ और वहाँ से आप क्रॉस करेंगे, एक बार वहाँ मंदिर में क्रॉस करेंगे तो आपको गोलोक में भी प्रवेश मिलेगा जीवन के अंत में, ऐसा एक स्थान है वहाँ पर, विरजा नदी का स्थान है। क्योंकि भौतिक जगत मैंने बताया ना आपको सुबह, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, बीच में क्या आता है विरजा नदी, उसको क्रॉस करने के बाद में वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। तो वहाँ पर उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और उसको आपको पार करना है कल, वो सब बताएंगे आपको अंदर। उसके बाद में एक जगह पर चित्रगुप्त और यमराज खड़े हैं, एक खंभे में चित्रगुप्त खड़े हैं, एक में यमराज खड़े हैं, और जो जो व्यक्ति रंगनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं उसका सबका रिकॉर्ड रखते हूँ और उन सब लोगों को गोलोक में एंट्री देते हैं बाद में। दो काम करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं मतलब क्या, नंबर वन यमराज के दूत आपको हाथ नहीं लगाएंगे, चित्रगुप्त जो है आपका नाम दर्ज करेगा उस लिस्ट में जो लिस्ट उनको ऊपर भेजनी है गोलोक धाम में, इसलिए उस खंभे के सामने से गुजरना है, ये ध्यान रखना। फिर कुरेश का मंदिर भी है क्योंकि कुरेश रामानुजाचार्य के शिष्य थे, उन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत समर्पण किया उसके प्रति, उनका भी वहाँ पर स्थान है और बहुत सारे स्थान हैं उसके अंदर, आप घूमते रहिए। और सुबह से 8 AM से लेकर रात को 10 बजे तक वहाँ पर फ्री रंगनाथ का प्रसाद का वितरण होते रहता है। एक सुंदर स्टॉल भी अंदर है जिसमें अलग अलग तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं खरीद के, आप खा भी सकते हो और बांध के बॉम्बे भी ले सकते हो, ऐसा एक बड़ा स्टॉल है, उसके लिए भी टाइम रखना, अंदर पूरा पूरी तरह से सफ़र कर लेना हर तरफ से। श्री रंगनाथ भगवान की जय हो।